किया, इन उपदेशों को उन्होंने श्रवण नहीं किया। श्री सचिनंदन गौर हरि ने कृपा करके उनके हृदय में भी अंतर से उनके हृदय में स्फूर्ति करा दी और समस्त सिद्धांतों की स्फूर्णा उनके हृदय में कर दी। ऊपर से मालूम नहीं यह कब कहा नहीं कहा, किंतु भीतर से ही स्फूर्णा की। उन्होंने पत्र स्वामी सिंधु और अपने अपने दूसरे दूसरे ग्रंथों में उसका वर्णन किया है। आज हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु के प्रथम श्लोक की कुछ व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे, जिसमें उन्होंने कृष्णचंद्र को, वृंदावन को, गोविंद गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को, महाप्रभु जी को प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा से मुझे ये कुछ स्फूर्ति हुई, उनको प्रणाम करते हुए इस श्लोक को आरंभ कर रहे हैं। उसको वो कह रहे हैं उत्तमा भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनाप्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। सबसे पहले उत्तमा भक्ति की परिभाषा दी। शास्त्रों में, वेदों उपनिषदों में कुछ भक्ति की भी व्याख्या है, पुराणों में भी भक्ति की व्याख्या है। हमारे रूप गोस्वामी से आने से पहले श्रीमद् भागवत इत्यादि में भी भक्ति की परिभाषा देखी जाती है, किंतु चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रह से श्रीलरूप गोस्वामी ने भक्ति की जो अभिनव व्याख्या दी, उसकी जो परिभाषा दी, पूर्व पूर्व में दिए गई हुई परिभाषाओं से अत्यंत सुंदर और सबको कंक्लूसिव, सब शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए उसके अंतर्भूत मानते हुए बनाते हुए उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की, जिसको सुन करके चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक जितने भी वैष्णव थे, स्वरूप दामोदर राय, रामानंद जी, नरहरि सरकार और सब जितने लोग थे, सब लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की इस श्लोक की। सनातन गोस्वामी थे इस श्लोक पर मुग्ध हो गए, तो आज हम लोग इस श्लोक की शाखाचंद्र न्याय से संक्षेप में, सूत्र में हम इसका कुछ अंतर्निहित भाव बतलाने की चेष्टा करेंगे। यदि वैष्णव होने की साथ है, यदि भगवत भजन करने की तनिक भी इच्छा है, तो इस श्लोक को समझना पड़ेगा। भले ही इसको पूर्ण रूप में न कर सके पालन, तब भी इसको जान करके इसमें प्रवेश करने की चेष्टा करनी होगी। वो वैष्णव उतना ही उन्नत है जिसने इस श्लोक का अर्थ समझ करके उनके अनुसार अपने तन, मन, वचन और आत्मा के द्वारा भगवान के चरणों में अपने हृदय की वृत्तियों को लगा दिया। और जो इस श्लोक को नहीं समझ पाएंगे, वो लोग कुछ सुकृति करें, साधुओं का संग हो, और सुकृति पुस्तक होने के बाद में सत्संग में आकर के गुरु बात करने की दीक्षा इत्यादि ग्रहण करें, अनर्थ दूर क्रमशः हो, और तब फिर इसकी सुकृति सुने। इस श्लोक का हम भाव नहीं जानेंगे और उत्तम वैष्णव में चले जाएंगे, प्रेम हो जाएगा, भाव हो जाएगा, इसकी कभी भी संभावना नहीं है। इसलिए श्लोक को बड़ी अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनाप्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। इसका साधारण रूप में सात्विक अर्थ यह है, जितनी प्रकार की भी कृष्ण की सेवा और कृष्ण के जनों की भक्तों की सेवा के अतिरिक्त जितनी प्रकार की भी अभिलाषाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका संपूर्ण रूप से परित्याग करो। दूसरी बात, ज्ञान कर्म आदि अनप्रतम, भक्ति ऐसी हो जो ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं हो। आदि जो तपस्या, व्रत, होम, स्वाध्याय, संयम, तीर्थ, पर्यटन, आलस्य, प्रमाद इत्यादि, ये इतना सब समझना चाहिए। केवल ज्ञान और कर्म ही नहीं, उसके अंदर में आलस्य, अनर्थ, जो तपस्या, व्रत, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा प्रभृति सब के द्वारा भक्ति आच्छादित नहीं होनी चाहिए। कर्म मार्ग के द्वारा अधिकांश समय में ज्ञान के द्वारा भक्ति आच्छादित हो जाती है। कोई कोई लोग भक्ति वृत्ति में आकर के फिर योगों का अवलंबन करने लगते हैं, कोई हाथ देखना सीखने लगते हैं, कोई कुछ करने लगते हैं, उसके द्वारा भक्ति आच्छादित हो जाती है। इसलिए भक्ति इसके द्वारा आच्छादित न हो। ये दो तटस्थ भक्ति के, उत्तमा भक्ति के लक्षण हैं। ये भक्ति नहीं है, भक्ति से इसका उतना अधिक संबंध नहीं है, किंतु ये भी नहीं होना चाहिए दोनों चीजें। और तीसरा है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, भक्ति उत्तमा, अनुकूल रूप में कृष्ण के लिए तन, मन, वचन इत्यादि सब प्रकार से समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के अनुकूल अनुशीलन का नाम उत्तमा भक्ति है। इतने कहने से भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा खोलकर विस्तार पूर्वक और पढ़ने की चेष्टा करते हैं। यदि समझ में ना आए तो आप लोग प्रश्न करेंगे, आधा घंटा का समय नहीं, पीछे की 15 मिनट का समय हम देंगे, अपने मन में रखेंगे, जो चीज समझ में ना आए आप लोग पूछने की चेष्टा करेंगे और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। यहां पर उत्तमा भक्ति का उल्लेख, यदि अपने हम ज्ञान कर्म से अनावृत होकर समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को छोड़कर कृष्ण के अनुकूल रहकर अपने तन, मन, वचन से सब समय कृष्ण के लिए चेष्टाएं करते हैं तो इसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि कोई उत्तमा भक्ति है तो कोई मध्यमा भक्ति और निकृष्ट भक्ति भी होगी। उत्तम कहने से ये उत्तम आदमी है तो कोई कनिष्ठ और मध्यम भी होगा, ये उत्तम व्यक्ति है तो कोई खराब व्यक्ति भी होगा। इसलिए यहां पर हो जाता है, यहां पर तो उत्तमा भक्ति की बात कही गई तो और कोई भी भक्ति है क्या? नहीं, भक्ति एक ही है और सब समय उत्तम ही है, किंतु जब साधक ऐसी स्थिति में रहता है जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं कर सकता, जिसके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य है, उसके अंदर में अनर्थ है, सर्व तत्व का ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं, तो ये भक्ति तो नहीं है, किंतु भक्ति जैसे उसमें चरणों में पुष्प देना, भगवान का नाम करना, भगवान की कथाओं को भी हम लोग सुनते हैं, किंतु जब उस समय में यदि तरह तरह की अभिलाषाएं हैं, जिसमें संसार सुख भोग की लालसा भी है, ज्ञान कर्म योग इत्यादि भी हमारे अंदर में, उत्तमा भक्ति कहा जाएगा किसको? यह सब चीजों निरुपाधित होकर के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति। यदि कोई अनर्थ न हो तब यदि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि किया जाए तो इसको कहेंगे उत्तम भक्ति। किंतु अनर्थ स्थिति में रहते हुए काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य और कृष्ण से कोई संबंध ज्ञान नहीं है, उस अवस्था में दो प्रकार की और भक्ति मानी गई है। जिसको मिश्रा भक्ति कहते हैं और जिसको हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सिंधु में वर्णन किया है, एक होता है संग सिद्धा और दूसरी होती है आरोप सिद्धा भक्ति। कभी कभी हम लोग आरोप सिद्धा भक्ति या संग सिद्धा भक्ति को ही उत्तमा भक्ति मान लेते हैं। कनिष्ठ लोग ऐसा ही मान लेते हैं, मानने के लिए बात है, किंतु यथार्थ में ये उत्तमा भक्ति नहीं है। संग सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। भक्ति के संग में जो क्रियाएं की जाती हैं तो उनको भी भक्ति कहा जाता है, किंतु यथार्थ में वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति के संग में है इसलिए, जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ में ओम स्वाहा, ओम सनातनाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम राधिकाय स्वाहा, जब घी लेकर के और आग में जब स्वाहा करते हैं तो उसको कहते हैं यज्ञ। अच्छा, हम यज्ञ के लिए वेदी बना रहे हैं, फूल ला रहे हैं, चंदन ला रहे हैं, अभिज्ञ वैष्णवों को बुला रहे हैं यज्ञ करने के लिए, आम्र पल्लव ला रहे हैं, उसके लिए जो यज्ञ में आहुति दी जाती है उन सब चीजों को ला रहे हैं, तो इसको क्या कहें? ईंट इकट्ठा करना वेदी के लिए और फूल चंदन लाना, फूल लाना, ये तो यज्ञ नहीं है, किंतु यज्ञ करने के लिए इसको ला रहे हैं, इसलिए इसको यज्ञ ही माना जाएगा, ये यज्ञ का अंग है। उसी तरह से जो भक्ति नहीं है और भक्ति के साथ में चलता है तब उसको कहते हैं भक्ति ही। जैसे कोई अत्यंत कृपालु है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, वैष्णवों को प्रणाम करता है, जो अपने प्रति अन्याय अत्याचार होने पर भी उसके प्रति प्रतिहिंसा नहीं करता, इस प्रकार से 26 गुण भागवत में वैष्णव के बतलाए गए हैं और उस 26 में से एक है कृष्ण के प्रति शरणागति होना, कृष्ण ही का शरण, और बाकी है अकृत द्रोह, जो द्रोह आचरण करता है उसके प्रति भी द्रोह आचरण मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, कृपालु हो और पीछे खड़े होकर के ना। तो इस तरह से ये 26 गुण में से 25 गुण भक्ति नहीं है, किंतु चूंकि भक्ति के साथ में कृष्ण के शरणागति के साथ में है इसलिए इनको भी भक्ति कहा जाता है। बाग बगीचा लगाना भक्ति नहीं है, कहीं है चौबीसवां संघ में बाग बगीचा लगाना? नहीं है। कुएं खुदवाना ये नहीं है, घर बनाना ये भक्ति नहीं है, किंतु हम इसलिए करते हैं बगीचा लगाते हैं, बगीचे में फूल होंगे तो वो ठाकुर जी के लिए अर्पण कर दिए जाएंगे, उनके लिए माला बनेगी, तो ये संग हुआ ना। यदि उसका उद्देश्य यही नहीं रहता बगीचे का, जो इसका फूल ठाकुर जी को लगेगा तो वैसे बगीचे बनाने से भक्ति कभी भी नहीं होगी, इसलिए इसको संग सिद्धा भक्ति ऐसे होगा। कुआं बनाया और बना करके फिर ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। कुआं बनाना भक्ति नहीं है, किंतु चूंकि कुआं बनाया और फिर गुरु जी को लेकर के समय गुरु जी को या वैष्णव को जी भाई ये कुएं से ठाकुर जी के लिए सेवा हो, इसका पानी बगीचे में जाएगा, लोग पानी पिएंगे, इसलिए इसको संग सिद्धा कहा गया। और एक है आरोप सिद्धा, आप भक्ति तो नहीं है किंतु आरोप करते हैं, आरोप मैंने समझते हैं, मैंने आरोप किया तमाल कृष्ण, तमाल जो वृक्ष है वो कृष्ण है, तमाल तो कृष्ण नहीं है किंतु हमने आरोप किया और उनको प्रणाम किया। इस तरह से भक्ति नहीं है, श्रवण कीर्तन तो नहीं है किंतु हम उसको आरोप कर लेते हैं कि ये भक्ति ही है, इसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। जैसे पत्रम जत करोसी जदश्नासी जज्जुहोसी ददासि तत् तत् तप जत तपत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। जो स्नान तुम करते हो, जो तुम भोजन करते हो, जो तुम शयन करते हो, जो तुम चलते हो, जो कुछ तुम करते हो वो सब हमको अर्पण कर दो, कृष्ण के लिए अर्पण कर दो। स्नान करना, भोजन करना, चलना फिरना ये भक्ति नहीं है, इसलिए ये उनके साथ में जब तक है या भगवान के लिए अर्पण जब करेंगे तब वो भक्ति का भाव होगा, किंतु वो भी उतना भक्ति नहीं होगी। इसलिए स्वरूप सिद्धा भक्ति ही उत्तम भक्ति हो सकती है। स्वरूप सिद्धा माने क्या? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिवमूर्ति, श्रद्धा स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसको भी छांट करके तीन लाइए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उसको भी फिर एक में लाइए हरिनाम संकीर्तन, इसमें सब पूछा जाता है। इसलिए ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है और ये उत्तम भक्ति हो सकती है। इस चीज को और भी समझने के लिए अब हम एक एक पद पर चलते हैं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम क्या तात्पर्य? अनुकूल्य मैंने होता है अनु निरंतर, अभी ये अभी किया, अभी सो गए, अभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी कुछ किया, ये नहीं, अनुमाने निरंतर। इसलिए भक्ति जो होगी कृष्ण के प्रति जो अनुकूल जो चेष्टा होगी वो कैसे होगी? निरंतरमयी होगी, तब उत्तम होगी। जब तक निरंतर नहीं होता है तब तक वो नहीं होगा। जो लोग कभी कभी नाम करते हैं वो वैष्णव है, जो निरंतर नाम करते हैं वो मध्यम है, और जिनके देखने से ही कृष्ण नाम आता है वो उत्तम वैष्णव है। इसलिए अनुकूल माने अनु निरंतर, और अनु का एक अर्थ है अनु माने पश्चात पश्चात, अनुगत्य ब्रजरत रसिक तत्वज्ञ संसार से परम विरक्त। ऐसे जो महापुरुष लोग हैं उनका अनुगत्य किया जाए, उनके अनुगत्य में ही, उनके देख रेख में ही यह भक्ति होगी, अपने मन मन से नहीं होगा। उनके गुरु जी या जिसका हम अनुगत्य कर रहे हैं ठीक जैसा चलते हैं वैसा ही हमको चलना पड़ेगा। हमारे गुरु जी तिलक लगाते हैं तो हम भी तिलक लगाएंगे, गले में तीन कंठी माला है, माला है। गुरु जी जैसा रखते हैं उसका अनुसरण करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा दाढ़ी फाड़ी मत रखना, और ऐसे चीज मत करना जो हम नहीं करते, हमारे गुरु वर्गों ने नहीं किया, नहीं करेंगे जीवन भर में। जटाजू तो रख लेंगे, इसलिए प्रतिष्ठा के लिए रख लेते हैं बहुत से। हम देखे हैं कि हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, उनके कुछ शिष्य लोग ऐसा करते थे, इसलिए उनका टोटली अनुसरण होना चाहिए। जिस आचार को, जिस विचार को हमारे गुरुजी, परम गुरुजी, हमारे गुरु वर्ग मानते हैं परंपरा से, ठीक उसी अनुरूप में चलना पड़ेगा। और नहीं तो ये भक्ति में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे वचनों को आदत तो दीजिए, उनका संग मत कीजिए, उनसे हरि कथा सुनने की जरूरत नहीं है। जो इन लाइन नहीं, बात तो कड़ी है, कड़वी है, किंतु अमृतमयी बात है। इसी को कहते हैं अनुगत्य अनुकूल। हम जैसा आप कहते हैं वैसा तो करता हूं, किंतु आपके सब विचार को नहीं मानता, तो ये अनुकूल कहां हुआ? गुरु जी ने कहा लंदन में जाकर के प्रचार करना। हमने कहा जी गुरु जी आपकी बात अभी नहीं मानेंगे, हम तो अभी जाएंगे न्यूयॉर्क। तो कहां हुआ बात? गुरु के लिए यदि प्राण दे देना पड़े तो प्राण देंगे, ये साधारण सी बात है, तो क्या है? तो अनुकूल क्या हुआ? इसलिए छोटी छोटी बातों में ही हम सबको देखना चाहिए कि हमारे गुरु जी का या जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, हमारे जिस परंपरा को गुरु परंपरा की धारा में आ रहे हैं, उन सब विचारों को अच्छी तरह से विचार करके उनके मन की जो अभिलाषा है उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और यदि नहीं चला सकते हैं तो भक्ति नहीं होगी। थर्ड क्लास की भक्ति नहीं होगी तो सेकंड और मध्यम और उत्तम की तो बात ही क्या है। इसलिए आनुकूल्य मैंने दो हुआ, एक हुआ निरंतर जमयी भक्ति हो और दूसरा अनु पीछे पीछे पचा। जैसे गुरु जी चलते हैं स्थिति प्रगत्य का भाषा समाधि सब इत्यादि गीता में भी कहा गया। अतः जब तक कि गुरु के प्रति निष्ठा नहीं होगी कभी भी भक्ति नहीं हो सकती है। स्वप्न में भी ये कल्पना मत करेंगे। और गुरु किसको कहते हैं? गुरु अपने ही गुरु से नहीं, परंपरा के लाइन में वो गुरु है कि नहीं, ये भी देखना होगा। तीन चीज बतलाया गया, साधु शास्त्र और गुरु भी वास्तव। शास्त्र में जैसा कि आज कहा गया है और एक साधु लोग जैसा कहते हैं और गुरु जो कहता है, तीनों को एक कर करके उसका अनुसरण करना चाहिए, उसके अनुगत होना चाहिए। शास्त्र का वह विचार जिसको हमारे गुरु परंपरा ने ग्रहण नहीं किया उसको हम नहीं ग्रहण करेंगे, शास्त्र का वचन होने पर भी। ना? समझ रहे हैं ना? हमारे गुरु परंपरा ने जिन जिन ग्रंथों को उन्होंने ग्रहण किया है अपनी परंपरा की धारा में, बस उसी से हमारा तात्पर्य है। और सबने ऋग साम यजुर् अथर्वश्च भारतम पंचरात्रकम राम मूल रामायण चैव, ये सब शास्त्र है। उसके अनुगत जो है हमारे रूप गोस्वामी के ग्रंथ और सब जो ग्रंथ हैं, ये सब अनुकूल है। इसलिए हमको वही शास्त्रों को लेना है जो हमारी गुरु परंपरा की धारा ने स्वीकार किया है, और लेने की जरूरत नहीं है। जो संत लोग गुरु के वचनों को और शास्त्र के वचनों को नहीं लेते हैं वो वैष्णव भी नहीं है, उनके बात को नहीं मानना है। और जो गुरु वैष्णव की परंपरा की धारा के विचारों को नहीं मानता और शास्त्रों के विचारों को भी नहीं मानता, ऐसे गुरु यदि कर भी लिया तो उनको त्याग कर दो, ऐसे गुरु से कुछ नहीं होने का। गुरु वह होगा जो शास्त्रों के वचनों के अनुसार में चलेगा और वैष्णव को सम्मान देगा, अपनी परंपरा की धारा को सम्मान देगा। जो गुरु वैष्णव को सम्मान नहीं देता उनकी निंदा करेगा, शास्त्रों के बात भी नहीं मानेगा, यदि फूल से कर ले दिया कर्थ दिया तो उनके अनुगत्य से काम नहीं चलेगा। इसलिए मिलाना पड़ेगा जो गुरु शास्त्र को और गुरु वैष्णव को मानता है, जो वैष्णव शास्त्र और गुरु को मानता है, और जो शास्त्र गुरु परंपरा और वैष्णव की धारा में माने गए, इन तीनों को ही लेकर के चलना पड़ेगा। एक से एक निकल गया तो वो मान्य नहीं है, इस प्रकार का होना चाहिए। तो अनुकूल मैंने हुआ अनुगत्य भी। किनका? कृष्ण, शास्त्र, गुरु और वैष्णव के। अनुकूल आचरण करेगा, अनुकूल लेगा। और एक अनुकूल शब्द का अर्थ है रुचिपूर्ण। हम जो करते हैं अनुशीलन, जो अनुशीलन हम तन मन वचन और आत्मा के द्वारा अनुशीलन कर रहे हैं, अर्थात कायिकी वाचिकी और मानसिक जितनी प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं वो कृष्ण के लिए होगी और वह अनुशीलन अनुकूल होगा। अनुकूल माने कृष्ण को रुचिकर होगा। आप मीठा खाना पसंद करते हैं, आप कोई कड़वी चीज पसंद करते हैं, आप कॉफी खाना पसंद करते हैं पीना, तो कृष्ण को भी दे देंगे? ऐसा नहीं। ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए, ऐसी हमारी चेष्टाएं होनी चाहिए जो कृष्ण के लिए रुचिकर हो, कृष्ण उसको चाहते हैं। हमारे चाहने से और नहीं जाने से नहीं होगा। भक्ति में सबसे पहले जब साधक प्रवेश करता है तो अपना जो अच्छा लगता है वही कृष्ण को निवेदन करता है। हमको गर्मी लग रही है ना, तो कृष्ण को भी पंखा चलाना लगे। हमें ठंडी लगती है तो क्या करेंगे? पंखा कृष्ण को नहीं देंगे। हमको प्यास लग रही है, सोचेंगे कृष्ण को भी प्यास लग रही है। इसलिए इसको कहते हैं आत्मवत् सेवा। आत्म माने अपने अनुसार। किंतु जब साधक और बढ़ जाता है तो अपना विचार छोड़ देता है। वो देखता है कि कृष्ण को प्यास लगी है कि नहीं, कृष्ण को गर्मी लगती है कि नहीं, कृष्ण को इसमें सुख होता है कि नहीं, अपना सब सब भूल जाता है। ये उत्तम अधिकार नहीं होगा भाई, ये कनिष्ठ में नहीं होगा, मध्यम में कुछ कुछ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले चेष्टा करनी चाहिए हमारी जो क्रियाएं हैं वो केवल हमको अच्छी लगती हैं या कृष्ण को भी अच्छी लगती है, हमारे गुरु जी को भी अच्छी लगती है। भक्ति में भी चलने वाले को इस चीज को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। हम केवल अपनी तक हम कृष्ण का भजन करते हैं कि इसलिए दुख दूर हो जाएंगे और मैं सुखी रहूंगा, ये भक्ति नहीं है। समझने की चेष्टा करेंगे। एक समय गोपियां, कोई गोपी कृष्ण को पंखे चल रही थी, पंखे चलते चलते कृष्ण का रूप देखा और देखते 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 कुछ आत्म विभोर हो गई। अभिभोर होने से उसके हाथ से पंखा गिर गया तो होश आया, बस लपक करके चुप चुप करके पंखे को ले लिया, अपने को धिक्कार देने लगी। वो अपने सुख में कृष्ण की सेवा में भी तर गई, बड़ा दुखित हो गई। इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। हम वैकुंठ में जाकर के या गोलोक ब्रज में जाकर के कृष्ण की सेवा करेंगे और उसमें बड़ा आनंद मुझे होगा, तो ये भक्ति का विरोधी विचार हो गया कि इसको भक्ति नहीं करेंगे, ये काम हो गया। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, इससे कृष्ण को सुख होगा या मुझे सुख? हरिनाम किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए ना भगवान के सुख के लिए? इस पर विचार करेंगे। आंख बंद करके मत रहो भाई, नहीं तो माया देवी पकड़ लेगी चपाट कर। माया देवी के दो पुत्र हैं, एक कन्या है, पुत्र भी है, आलस्य पुत्र है और जम भाई, ये उसकी कन्या है। तो पहले स्वयं माया नहीं आती, अपने पुत्र और कन्या को भेज देती है और उसकी कन्या आंखों पर चढ़ जाती है और उसके ऊपर में इतना थार कर देती है ये आंखें कुछ पलके ठहरती नहीं है। और इतने में पुत्र आकर के उसका गला पकड़ करके बस आलस्य करा, ऐसा जम भाई बहन। और फिर इसलिए करती है, ये कृष्ण की कथाएं सुनने से तो ये हमारे राज्य से निकल करके चला जाएगा, उसको जाने मत दो। इसलिए आंख बंद करके हरि कथा में जब हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहे हैं तो सब मन दे करके सुनने चाहिए। कभी आंख बंद करके तन्मय में आप होने तो उसी में तन्मयता में माया प्रवेश कर जाएगी। तो अनुकूल नहीं है कृष्ण अनुशीलन, मैं कह रहा था अनुकूल कृष्ण को रुचिकर है कि नहीं। हम सो रहे हैं तो ये कृष्ण को अच्छा लगता है कि नहीं? हम सोते हैं और कृष्ण को अच्छा नहीं लगता तो मत सो, तो भक्ति नहीं होगी। हम पानी पीते हैं, कृष्ण को अच्छा लगेगा कि नहीं? गोपियां श्रृंगार करती हैं, ऐना में अपने रूप को देखती हैं, कभी कृष्ण को अच्छा लगा, वाह थोड़ा सा ऐसा कर लो तो कृष्ण को और अच्छा लगेगा, ये भक्ति है। जरा हंसू, हंसने से कृष्ण देख करके और मुस्कुरा उठते हैं, इसलिए हंसती हैं। और कृष्ण मुस्कुराते हैं इसलिए ये गोपियों को आनंद हो, इसलिए वो दोनों भक्ति ही का मूल। इसलिए हम जो कुछ क्रियाएं करते हैं उसमें कृष्ण को सुख है कि नहीं है इस पर विचार करना पड़ेगा। और यदि अपने सुख के लिए बैकुंठ में गए तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक राधा माधव चिंतन नाम की पुस्तक लिखी और उसमें शास्त्रों की विभिन्न जगहों से सब संग्रह करके उसमें लिखा। भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर में जितने बड़े बड़े विद्वान थे उनके पास में ये समालोचना के लिए ये ग्रंथ भेजा गया। मैं भागवत पत्रिका का एडिटर संपादक था, मेरे पास में भी वो पुस्तक आई, इतनी मोटी सी। उस समय बाई चांस हमारे गुरु जी मथुरा में थे। गुरु जी को मैंने पुस्तक दिया कि ये बड़ी सुंदर पुस्तक आई है राधा माधव चिंतन, इसको जरा आप देखिए। तो उन्होंने ले लिया। अब बस एक मिनट में उसके पन्ने दो एक उलाट ली, कभी रद्दी से रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक की तरफ। मैंने कहा जी कैसे, आपने थोड़े से में विचार कर लिया, पढ़ा तो कुछ नहीं। तो मैंने सब ग्रंथ में जो कुछ लिखा है मैंने सब पढ़ लिया। और ये कैसे पढ़ लिए? कहे अच्छा ये पेज निकालो, बस पेज निकालो, देखो तो ये पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा नहीं, कहा ऐसे ही अंदाज से उसका सूची पत्र देख करके उसमें लिखा था, हे कृष्ण मैं वृंदावन में पहुंचू और एक कदम तो वृक्ष के नीचे आप मुरली बजाते हुए मधुर मुस्कान से कटाक्षभरी नेत्रों से हमारे तरफ में देखिए। उन्होंने कहा जैसे इसको क्या कहेंगे, ये भक्ति नहीं है, काम है। हम चाहते हैं कृष्ण को त्रिभंग रूप में खड़े होकर के अपने तरफ में मुस्काते हुए देखना, ये इससे हमको आनंद होगा ना उसको आनंद होगा कृष्ण को। कृष्ण इज नॉट अवर ऑर्डरली, वो हमारा असली नहीं है, हमारा हुक्म शामिल करने वाला वो नहीं है। हम उसके हुक्म शामिल जब करेंगे तो भक्ति हो, इस विषय को खूब अच्छी तरह से समझेंगे। जिस क्रिया में हमको आनंद होता है, सुख होता है, कृष्ण के सुख का विचार नहीं, वो भक्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण के लिए रोचमाना भक्ति होनी चाहिए। अर्थात कृष्ण को रुचि अच्छी लगे, जो चीज कृष्ण को अच्छी नहीं लगती है और ब्रह्मचारी पर्सन है, डोंट डो लाइक दिस, स्ट्रेट सिट स्ट्रेट, तो वो अनुकूल कृष्ण को रुचिकर है कि नहीं। अब एक उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाता हूं। यशोदा जी कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है, इतने में कृष्ण करते हुए बिस्तरे से पलंग से नीचे उतरे, मैया को खोजा, देखा आज मैया कहां है, कुछ नींद आ रही है, कुछ नींद कुछ खुल भी गई है किंतु अभी वो सबाश बचता है नहीं। मैया को नहीं देखा तो रोने लग गए, देखा जी मैया आ नहीं रही और जोर से चिप रोने लग गए। भले ही आंखों में आंसू फेंकी नहीं किंतु जोर से रोना, बच्चों का अस्त्र है रोना। दूर से मैया गति मंथन कर रही, मैया को देख रहे हैं जो हम, किंतु जो घर घर शब्द हो रहा है और तन्मय होकर के कृष्ण नाम का कीर्तन कर रही है, वो ऐसे तन्मय हो गई कि उनको सुनाई नहीं पड़ रहा। वो कीर्तन क्या है? गोविंद दामोदर भवेदी उदुख संघट तंडुलांश संघं तयंतो मुसलई प्रमुखा गायन्ति उच्चै जनितानुराग गोविंद दामोदर भवेदी। सुपर से इसका गायन कर रही है, दधि मंथन कर रही है। दधि में जो ध्वनि निकलती है मानो मृदंग का पिछला भाग, धिक्तां धिक्तां। उन लोगों को धिक्कार है जो कृष्ण का भजन नहीं कर, और इधर से टन टन जो बजता है वो मृदंग का, इधर से वो उसमें हाथों की जो चूड़ियां हैं सोने की, जो झनझन की आवाज आती है माने वो करताल है, और अत्यंत मधुर स्वर से गायन कर रही है। कृष्ण रो रहे हैं, उनको पता नहीं, मैया नहीं सुन रही, और जोर से चिल्लाए और निकट में आने लगे, गिरते पड़ते पड़ते आए रथ मंथन को पकड़ लिया और केस से उनका एक हाथ पकड़ लिया। जो सदन लिखे जी रथ मंथन को किसने पकड़ा, बजट पीछे की तरफ में मुड़ी, अरे ये तो कन्हैया आ गया। बजट रथ मंथन बंद करके अपने हाथों से कन्हैया को गोदी में बैठा दिया, अंचल से छिपा दिया और उनके स्तन मुख में दे दिए कृष्ण के। यशोदा जी के स्तन में विश्व ब्रह्मांड का जितना भी क्षीर समुद्र का दूध है वो सब यशोदा मैया के दूध से होता है, और कृष्ण का पेट बहुत बड़ा जिसमें असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड समाया है। कृष्ण को भूख भी लगी है, खूब जोर से पी गए हैं, आज यशोदा मैया के स्तन में इतना आबाद समुद्र जैसा दूध जो कृष्ण जन्म जन्मांतर से पीते पीते रह जाए किंतु दूध कम न हो, और कृष्ण की भूख ऐसी जो समस्त दूध आ जाने पर भी उनकी भूख न मिटे, दोनों में चलने लगा रही सारी, कृष्ण ललक ललक करके पी रहे हैं और वो पिला रही है, बहुत देर तक पीते रहे। इतने में सामने चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफनने लग गया। यशोदा जी ने कहा, अरे तू क्यों उफनता है? अर्थात कोई फंसता है वो कहता है कि मैया तेरा दूध तो वो कृष्ण पीता रहेगा और कृष्ण की भूख नहीं मिटेगी और दूध भी कम नहीं होगा तो ये तो पीते रहेंगे तो हमको सेवा का सुजोग कब मिलेगा। वो दूध मानो ये कह रहा है कि हम सेवा में नहीं लगे, जब कृष्ण की सेवा में नहीं लगे तो जीवन का रहना जरूरत नहीं है, जीवन को हम छोड़ देंगे, इसलिए वो दूध आग में गिर रहा है। प्राण की सुख लगिया नरोत्तम दास के नाल। यदि कृष्ण की शरण है तो जीवन को धारण करने की जरूरत क्या है, इसलिए वो दूध गिर रहा है। जो सदा नहीं नहीं नहीं, मैं पहले तुम्हारा दूध तुमको सेवा में लगा करके पीछे अपना दूध पिलाऊंगी। गुरु जी ऐसे ही करते हैं, गुरु जी दूसरे सेवकों को भगवान की स्वामी ने युक्त करते हैं, ऐसा नहीं जो अपनी सेवा में लग गए और दूसरे किसी का ध्यान नहीं रहा, अपना छोड़ करके बस उनको लगा देंगे। राधा जी क्या करती हैं, कृष्ण की सेवा करती हैं, तो किसी को सुजोग ही नहीं मिलेगा, इसलिए राधा जी अपनी सेवा बंद करके इस सारे से दूसरों को गोपियों को कृष्ण के निकट उनकी सेवा करने के लिए भेजती है। इसलिए यशोदा जी ने लपक करके गई और दूध को उठाने लगे। कृष्ण रोने लगे, ठहरो, कृष्ण पी रहे दूध, और अत्यंत अवस्था में कृष्ण को रखा। 10,000 हाथियों का बल वाली पूतना अपने स्तन से कृष्ण को नहीं हटा सकी, और ये गोपी यशोदा जबकि वो हटाने लगी कृष्ण को अपनी गोद से बैठाने लगी तो कृष्ण अपने पैरों से जकड़ लिया, हाथ पकड़ लिए स्तन से और मुख जो से ऐसे लगाया ये मैया न हटा सके, पूरा जोर लगाया अपना पर ब्रह्म का जितना जोर है, किंतु जसोदा ने एक खक्का दे बैठ बैठो। कृष्ण देखते रह गए, उनका जोर तनिक भी नहीं चला और उतना 10,000 हाथियों का बलवाली, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। प्रयास करते करते थक गई एक, इतना भी उसको कृष्ण को अपने स्तन से अलग नहीं करी, प्राण लेकर कहीं छोड़ा। गोपियों के आगे कृष्ण सब समय हार जाते हैं, बस उनको बैठा दिया, कृष्ण तो बिगड़ गए, दांत कड़मड़ी करने लग गए और आंखें लाल हो आई, भाव चढ़ गया धनुष जैसा, कुछ कर न सके। तो क्या किया, अब यहां पर ये विचार नहीं कर रहे, पूरी स्टोरी नहीं बतला रहे, है बड़ी मनोरंजक, होने में तो अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे भैया, अब अभी जो प्रसंग ले रहे हैं उसको थोड़ा सा बतला रहे, एक दिन और बतला, अभी कल समय है, कल यदि होगा तो बतलाएंगे।